ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனு, ஹம் லோக் வைதிக் சாந்தி மந்த்ர கே ஊபர் चर्चा कर रहे हैं। क्रम से तृतीय शांति मंत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं। ओम यश्चंदसा मृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव, स मेन्द्रो मेदया स्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरी विश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देखिए, मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है स्वरूपानुसंधान। स्वरूपानुसंधान उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म ही अपना स्वरूप है, उस ब्रह्म का अनुभव करना। ब्रह्मानंद का अनुभव सज्जनों केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, अन्य किसी भी जन्म में इसकी योग्यता नहीं है। इसलिए जो प्रयत्न करना है वो इसी जन्म में करना। यही एकमात्र मौका है, और यदि इस अवसर को, इस मौके को चूक गए तो फिर संभावना नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि इस अवसर में और भी बहुत जो है कार्य है वो भी हम करते जा रहे हैं, किंतु वो जो कार्य है जो हम कर रहे हैं वो अन्य जन्म में भी संभव है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो चार कार्य है वो मनुष्येतर जन्म में, योनियों में भी ये संभव है। उसको प्राप्त करने के लिए महाप्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, वो अल्प प्रयत्न से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मात्र यही जन्म में जो प्राप्त किया जा सकता है प्रयत्न उन्हीं के लिए ही करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म से बहुत प्राप्त किया जा सकता है, थोड़े से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। इसलिए आवश्यकता है आत्मज्ञान की। हमारा ये शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और बुद्धि, इसमें लगे, इसलिए प्रार्थना की जा रही है ताकि हम महाप्रयत्न से इस तत्व को प्राप्त करें। प्रयत्न के लिए जैसे अभी जो कहा, देह इंद्री मन और बुद्धि स्वस्थ होनी चाहिए। देखिए जो दुकान है यदि आप रुकना है तो पुत्र को भेज करके भी चला सकते हैं, दुकान चलेगी। फैक्ट्री की बात है तो वो भी ऐसा हो सकता है कि आप आवश्यक कार्य से बाहर भी गए तब भी वो चल सकती है, पार्टनर भी चला सकते हैं, मैनेजर भी चला सकते हैं। जितने भी सांसारिक लाभ है वो सब लाभ अन्य से भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्य को भी बिठा सकते हैं, लेकिन ये जो लाभ है आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे जगह तुम चले जाओ, वो खुद को ही जाना पड़ेगा। उसके लिए प्रयत्न खुद को ही करना है। और यही देह इंद्री मन बुद्धि एकमात्र साधन है जिस साधन से आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए एकमात्र यही साधन है और ये साधन बिल्कुल स्वस्थ रहने चाहिए। यदि इस साधन को गंवा दिया या ये साधन कमजोर हो गए तो फिर हाथ से मौका फिसल जाता है। इसलिए बुद्धि शक्ति भी चाहिए, शरीर की स्वस्थता भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान के योग्य जो हमारी मेधा बने, हमारी बुद्धि बने, इसलिए यहां ओमकार से प्रार्थना की गई। ओमकार से ये प्रार्थना की गई, ये भावना की गई कि हमारी जो मेधा है, हमारी जो बुद्धि है वह आत्मज्ञान के योग्य बने। स मे मेधया स्पृणोतु, स मने वह जो ओमकार है वो ओमकार हमारी मेधा को आत्मज्ञान के योग्य करे। जो वेद में ऋषभ है और जो स्वरूप से विश्वरूप है और वेद से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो ओमकार है वो हमको प्रज्ञा बल से युक्त करे। इसलिए मेधा की सिद्धि के लिए प्रार्थना की गई। अब जो है आगे शरीर की स्वस्थता के लिए प्रार्थना की जा रही है। मेधा हो, बुद्धि हो, प्रज्ञा बल हो, साथ साथ में शरीर की स्वस्थता भी होनी चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अध्ययन के लिए जा ही नहीं सकते। शरीर में कुछ तकलीफ है तो चित्त व्यग्र रहेगा और स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। और चित्त की व्यग्र अवस्था में कुछ भी किया जाता है तो वो सफल नहीं होता, फलदायी नहीं होता है। इसलिए कहा व्यग्र चित्तो हतो जपः। चित्त यदि व्यग्र है तो आप जाप भी करेंगे तब भी वो हत समाप्त हो जाते हैं, फलदायी नहीं रहते हैं। इसलिए तन मन धन उन सबकी क्या चाहिए? स्वस्थता चाहिए। इसलिए मेधा है तो मंत्र को कहकर कि अब रोगादि से शरीर रहित रहे, इसलिए प्रार्थना मंत्र बताए जा रहे हैं। शरीरम में विचर्षणम, ये कहा गया, ये प्रार्थना की गई। शरीरम में विचर्षणम कहा गया, ये जो मेरा शरीर है, मैं शरीरम विचर्षणम, मेरा ये जो शरीर है वो विचर्षणम, ऊपर से लगाना है भूयात। विचर्षणम हो यानी कि रोग से रहित हो। तो क्या प्रार्थना से रोग की निवृत्ति संभव है क्या? यदि शरीर में रोग की निवृत्ति करनी है तो हमारे यहां आयुर्वेद है, औषध सेवन करो तो रोग की निवृत्ति होगी। तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है कि मेरा शरीर विचर्षण हो, रोग से रहित हो, तो ये क्यों कहा? तो देखिए आयुर्वेद का जो लाभ तो तभी होगा जब शरीर में रोग हो और औषध सेवन करे। रोग ही ना हो तो आयुर्वेद की आवश्यकता रहेगी क्या? औषध सेवन की आवश्यकता रहेगी? तो पहले से ही हमारा शरीर रोग से रहित तो हो, वो कब हो सकता है कि हम अपने जीवन को संयत बनाए। रोग कब होते हैं? खाने पीने से ही होते या फिर और कोई कारण से होते? सबसे बड़ा कारण है निषिद्ध खान पान। हम निषिद्ध खान पान करते हैं, उसके फलस्वरूप ही हमको रोग होते हैं। यदि हमारा खान पान, उठना बैठना वो यदि युक्त है तो रोग की संभावना ही नहीं है। भगवान ने कहा गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार और विहार युक्त है तो उसको संभावना ही नहीं है रोग की। आहार युक्त होना चाहिए, विहार युक्त होना चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। और आहार से केवल भोजन ही न समझे, क्योंकि ये आहार शब्द है वो भोजन में इतना रूढ़ हो चुका है कि हम आहार शब्द सुनते ही हम भोजन को ही मान लेते हैं। आहार से अभिप्राय है शरीर की सिद्धि के लिए जो आहरण किया जाए उनको आहार कहते हैं। शरीर को टिकाने के लिए आहरियते इति आहार, जिसका आहरण किया जाए उनको कहते हैं आहार। देखिए ये जो अपनी चक्षुर इंद्रिय है उनको क्या चाहिए? रूप दर्शन चाहिए, तो वो क्या है? आहार है। आहरण करती है ना चक्षुर इंद्रिय, क्या करती है? रूप का आहरण करती है। और आहार का मुख्य लाभ है शरीर की स्थिति। तो देखिए यदि हम चक्षु से युक्त दर्शन करेंगे, विहित दर्शन करेंगे तो वो युक्त आहार हुआ, यदि निषिद्ध दर्शन करेंगे तो फिर वो रोग का कारण बन जाएगा। रोग से अभिप्राय ये शरीर ही रुग्ण हो जाए वो नहीं, इंद्रिय के द्वारा निषिद्ध जो संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारा मन है वो भी क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, वासना से युक्त हो जाएगा, तो क्या वो वेदांत का श्रवण करेगा? नहीं। इसलिए आहरियति इति आहार, इस व्युत्पत्ति से जो भी इंद्रियों के द्वारा हम जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करते हैं वो सब क्या है? आहार है। आपको यदि पूछे कि आपके पास एक मुख है या पांच मुख है तो क्या कहेंगे? ये कई कहेंगे ना, किंतु हम पांच मुख वाले हैं। पांच मुख से, और मुख उनको कहते हैं जिससे आहार किया जाए, उनको क्या कहेंगे? मुख कहते हैं ना। तो ये जो रूप का जो आहार करते हैं वो किससे करते हैं? चक्षु से। तो चक्षु भी क्या है? मुख है। ऐसे ही शब्द का आहरण किससे करते हैं? शब्द का आहरण भी श्रोत्र से करते हैं। जिसके बिना हम न रह पाए उनको आहार कहते हैं। क्या हम सुने बिना रह सकते? शब्द रूपी आहार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो श्रोत्र भी क्या हुआ? मुख हुआ। और स्पर्श का जो आहार जिससे ग्रहण करते हैं वो है त्वगिंद्रिय। तो त्वगिंद्रिय भी क्या हुआ? मुख हुआ कि नहीं? वो मुख है। त्वगिंद्रिय से यदि हम स्पर्श करें तो वो विहित स्पर्श करे। चक्षुर इंद्रिय से यदि हम रूप का ग्रहण करें तो वो विहित रूप का ग्रहण करे। घ्राणेन्द्रिय से हम यदि गंध का ग्रहण करते हैं तो वो विहित ग्रहण करे। और ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच ही विषय है, छठा तो कोई है नहीं। पांचों विषय की आवश्यकता है हमको ये शरीर की स्थिति के लिए। तो पांच मुख वाले हैं। भगवान शंकर कैसे हैं? पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम है ना? भगवान शंकर के मुख कितने? पांच। और नेत्र कितने? तीन हैं। अब आपको पूछा जाए कि आपके पास नेत्र कितने हैं तो क्या कहेंगे बताओ? दो? एक ही है। वो तो एक है, वो गोलक दो है। चक्षुरिंद्री दो है क्या? यही है बताओ, एक ही है। वो तो गोलक दो है, उससे आप ये थोड़ा ना कहेंगे हमारे पास दो नेत्र है। चक्षुरिंद्री तो एक ही है। और भगवान शंकर के पास तीन नेत्र है। देखिए हमारे पास भी तीन ही है, हम जानते नहीं। पांच मुख तो ये हो गया, पांच ज्ञान इंद्रिया वो क्या है? वो पांच मुख हुए, ये गोलक समझ लो, श्रोत्र त्वग रसना घ्राण वगैरह जो कहा। और नेत्र उनको कहते हैं जिससे देखा जाए, उनको कहते हैं नेत्र। जिसके जिससे रूप का ग्रहण हो, तो ये जो जागृतकालीन संसार है उनको हम ये जो प्रत्यक्ष दृष्ट ये जो चक्षु है गोलक, उनके द्वारा हम देखते हैं। तो ये एक नेत्र हुआ। और जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं कि नहीं देखते? स्वप्न सब देखते हैं ना? आप कहते हैं मैंने स्वप्न देखा, बहुत बढ़िया स्वप्न था, उठ करके सुनाते हैं ना? तो स्वप्न में जो रथ गजा दिखा, दर्शन हुआ, वो किस नेत्र से हुआ बताइए? क्या ये जागृतकालीन नेत्र थे? वो तो आप सोए पड़े हुए, वो नेत्र के गोलक तो बंद है। तो उस समय भी आपने देखा, ये बात निश्चित है, क्योंकि जो नहीं देखा है उनका आप जो है वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन करते हैं तो देखी हुई चीज का ही वर्णन कर रहे हैं। आप सपने में रथ गजादि देखे हैं तो बिना देखे तो आप वर्णन कर ही नहीं सकते, वहां देखा जरूर है। और ये जो चक्षु वहां थी नहीं, देखा है तो वहां दूसरी भी चक्षु है। और इससे आगे सुषुप्ति अवस्था में जब चले जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं दिखता है। कहते हैं ना वहां कुछ भी नहीं दिखा, न किंचित अहम अवेदिशम, मैंने वहां कुछ भी नहीं देखा। वहां आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। क्या देखा वो तो? कुछ भी नहीं, वो भी क्या हुआ? देखना हुआ। तो क्या वो स्वाप्निक आंख थी वहां पर? और आप बखूबी बिल्कुल उठ करके कहते हैं मैंने वहां कुछ भी नहीं, उस अवस्था में कुछ भी नहीं देखा। तो कुछ भी नहीं देखा वो भी देखना ही तो है, उसके लिए भी तो आंख चाहिए कि नहीं? जैसे यहां घड़ा है तो घड़ा देखा, अब घड़ा नहीं है तो घट के अभाव को भी क्या हुआ? देखा कि नहीं? घटा भाव को भी अपने देखा कि यहां घड़ा नहीं है, घड़े के अभाव को देखा अपने। और यदि घड़ा विद्यमान होता है तो आप घड़े को देखते ऐसा बोलते। वहां आपने कुछ भी नहीं देखा, वो भी उनको भी देखने के लिए क्या चाहिए? आंख चक्षु चाहिए कि नहीं? और वहां जो है देख रहे हैं उससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि आप वहां सोए हुए नहीं है। यदि सोए हुए होते तो देख नहीं सकते थे। जैसे समझ लो कि आप अपने कोठी की रक्षा के लिए वॉचमैन रखते हैं, नाइट वॉचमैन, तो वो जो है रात भर क्या करता है, जगता है। उनका कार्य है रात भर चौकीदारी करना। तो रात को 12 बजे कोई आता है, अब आप तो सोए हो, रात को 12 बजे कोई आता है और कुछ करके चला जाता है, उनको वो भगाता है। सुबह में वो आपको बताते हैं कि रात को 12 बजे अमुक व्यक्ति आया था और कुछ करने के उद्देश्य से आया था, हमने उनको भगा दिया। तो वो उस समय क्या कर रहा है, वो सोया हुआ बैठा है या जागता हुआ बैठा हुआ, तभी तो उन्होंने देखा। यदि वो सो गया होता तो वो चोर को नहीं देख सकता था। इसलिए वो कहता है कि मैंने उनको देखा और भगा दिया। ठीक इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में भी हम कहते हैं हमने कुछ भी नहीं देखा। ये इस बात को सिद्ध करता है ये वाक्य कि उस समय भी हम देख रहे हैं। तो वो ये जो जागृतकालीन चक्षु है वो भी वहां नहीं है, स्वाप्निक भी नहीं है, और वहां एक तीसरी चक्षु है, वो तीसरी आंख हुई। तो तीन आंख वाले हुए कि नहीं हम लोग? ये जो हमारा आत्मा है वही शिव है, वही पांच मुख से आहार का ग्रहण करता है और तीन नेत्र से देखता है। इसलिए पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। तो बात चल रही थी, ये तो एक अवांतर बात बीच में कह दी, किंतु बात ये थी कि आहार और विहार हमारा कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। यदि हमारा आहार और विहार युक्त है तो हमारा शरीर जो है ना वो निरोगी रहेगा।